ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
இஷே ஏகார் ஹே அகே துவா ஹே தும்கு ஊர்ஜே துவா ஐசே மந்திர ஆதா ஹே இஷே துவா மே சே மே ஏ ஹே आगे त्वा है. संस्कृत में दोनों मिलाकर कहते हैं तो बीच में संहिता होने पर एक तकार अधिक हो जाता है. अनचीचा सूत्र से द्वित्व हो जाता है. एक के बाद तकार है, त्वा में तकार है, परमेश्वर वर्ण है, एक तकार आ जाएगा. इसे त्वा पूर्व वर्ण है ए, उत्तर वर्ण है त, इसे में ए है पूर्व वर्ण. त्वा का प्रथम वर्ण क्या होगा? तो और बीच में एक तकार आ जाता है. पूर्व वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करे, उत्तर वर्ण में द्योलोक स्वर्ग दृष्टि करे, मध्य में अंतरिक्ष है, यही कहा गया. इसमें देखो अतः दे पृथ्वी पूर्व रूपम. पूर्व रूप में इसे उपासना करने के लिए कहा गया. लोक संबंधी, लोक संबंधी है तो जो दोनों मिल करके दोनों का इसे और त्वा दो हो गया तो पूर्व वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करे. इसे में ए, इसमें पृथ्वी दृष्टि, जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं. सर्वत्र उपासना में किसी में किसी का आरोप, प्रतीक उपासना में ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षार्थ, ब्रह्म बुद्धि परमात्मा बुद्धि, मूर्ति में परमात्मा का चिंतन, शालग्राम में मालूम है पत्थर है शालग्राम शिला, उसमें विष्णु बुद्धि से उपासना. ये उपासना उपनिषद में ऐसे एक में अनग्नि में अग्नि दृष्टि, पंचाग्नि विद्या में असो वावलोक गौतम अग्नि, स्वर्ग को अग्नि रूप से चिंतन करे, ये सब उपासना के मूल है. एक अन्य में अन्य का चिंतन, जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे चिंतन, जैसे दिखता है ऐसा नहीं. शालग्राम दिखता है एक प्रकार, जो दिखता है उसका चिंतन नहीं. विष्णु भगवान शालग्राम में है, विष्णु भगवान का चिंतन. मूर्ति बनाते हैं, परिच्छिन्न मूर्ति है, किंतु चिंतन करते समय परमात्मा को परिच्छिन्न नहीं मानना. ये नहीं मानकर कोई परिच्छिन्न मानकर उपासना करते हैं. वो शास्त्र में आया ब्रह्म बुद्धि करे, परिच्छिन्न में ब्रह्म व्यापक ब्रह्म बुद्धि करे. व्यापक ब्रह्म को इसे छोटा परिच्छिन्न रूप नहीं माने. पूजा तो करेंगे प्रतीक में मूर्ति में, भगवान का आवाहन आदि करके पूजा करते, परमात्मा पूजा ग्रहण करते, फल देते, ये सब है. किंतु उपासना करने का मूल है, जो उपासना ध्यान करना है तो व्यापक परमात्मा का चिंतन करे. परिच्छिन्न मूर्ति में, परिच्छिन्न शालग्राम में, अपरिच्छिन्न परमात्मा विष्णु व्यापक परमात्मा का चिंतन, यही उपासना का सर्वत्र है. तो यहां भी एक उपासना है. वर्ण में शब्द उच्चारण करते हैं उसमें भी उपासना है. सारे शास्त्र में परमात्मा प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र करने के लिए कुछ भी कार्य करे इसे उपासना करनी चाहिए. ये संगीत सीखते हैं उसे भी ध्यान करना होता है. संगीत भजन से लेकर के ध्यान करके एकाग्र कर परमात्मा का चिंतन. ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष ज्योतिर्विद्या सीखने के लिए, आयुर्वेद शास्त्र में कुछ उसे भी उपासना है. वैद्यों का भी नियम है, जड़ी बूटी लाते समय परमात्मा का ध्यान करना, किसी देवता का चिंतन करना, क्या मंत्र बोलना, ये सब नियम है. सब तो इसी प्रकार है. तो नियम से सब करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है. सकल व्यवहार परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है. भोजन बनाते समय किस नियम से बनाना है, उसके बाद अग्नि में अर्पण करते, गाय को खिलाना, अतिथि को देना, ये जो नियम परंपरा है सब शास्त्र पुराण में है. पुराण शास्त्र पढ़ करके प्रामाणिक लोग उसका अनुकरण करते हैं. जिससे पिता पितामह प्रमितामह परंपरा से प्राप्त है कुल में, उस परंपरा से करते हैं. तो नियम कुछ रहता है, किस दिन क्या खाना, किस दिन नहीं खाना, ये भी रहता है. किस मास में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते ये रहता है, बहुत कुछ नियम है। सब नियम इसीलिए मुनि ऋषि के द्वारा रचित है, एक उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति के लिए। वो जो पुण्य त्योहार बनाते हैं उसमें क्या क्या पुष्प क्या भोजन बनाना क्या पूजा करते हैं ये सब सब रहता है, उसमें कुछ कारण है। और ऋषि महर्षि लोग सर्वज्ञ होते हैं, सब वो बताते हैं जैसे कहा गया उसके अनुसार। अभी वर्ण शब्द उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं तो इसमें शिक्षा पढ़ते समय दो इसे त्वा इसे त्वा में ई ए स में एकार तीन वर्ण है, आगे त्वा में तकार वकार आ, उसमें दोनों को साथ रखकर बोलेंगे एक त तो अधिक हो जाता है विकल्प से, एक अधिक तकार उच्चारण कर सकते। तो इसे त्वा में पूर्व एकार में पृथ्वी दृष्टि करी, पृथ्वी के समान है। त्वा के तकार में उत्तर द्व्युलोक स्वर्ग दृष्टि करे, तो देखो इसमें श्रुति में दिया पृथ्वी पूर्व रूपम द्योर उत्तर रूपम, आकाश हो गया संधि, दोनों के बीच में संधि हो गया आकाश, दोनों के बीच में स्थान है संधि में, और संधि क्या हो गया आकाश, आकाश संधि मध्य है, और उसके बाद वायु है संधानम, संधि थे अस्मिनित संधि, और संधान है संधि थे अनेना, संधि और संधान में भेद समझना। जहां मिलन होता है उस स्थान का नाम संधि, और जिसके द्वारा मिलन होता है उसका नाम संधान। देव और स्वर्ग बीच में जो स्थान है उसको कहेंगे संधि, और दोनों का मिलन जिसके द्वारा होगा उसको कहेंगे संधान। पृथ्वी स्वर्ग दोनों का मिलन होता है वायु के द्वारा, वायु हो गया संधान। पृथ्वी स्वर्ग के बीच में जो स्थान है अंतरिक्ष है आकाश है, ये क्या हो गई संधि, आकाश स्थान संधि, दोनों के बीच में जो स्थान संध्यत है अश्विन, जिसमें संधान होता है जिस स्थान में उस स्थान होगी संधि, और जिसके द्वारा मिलन होता है हो गया संधान। ये दोनों को समझना, आगे पांच अधिकरण वही कहेंगे, बार बार व्याख्या नहीं करेंगे। पूर्व रूप में एक दृष्टि, उत्तर में एक दृष्टि, ये तो स्पष्ट हो जाएगा वर्ण में। बीच में जो स्थान है उसका नाम हो गया संधि, और जिसके द्वारा दोनों का मिलन होता है उसका नाम हो गया संधान। इसे त्वा में पूर्व वर्ण क्या है, इसे पूर्व वर्ण क्या है एक, उत्तर वर्ण है एक आगे त्वा का तकार, दो वर्ण है एक इसे शब्द है अंत में ए है, त्वा का पहला वर्ण तकार है, पूर्व वर्ण ए में क्या दृष्टि करनी है पृथ्वी दृष्टि करनी, उत्तर वर्ण क्या है तकार, तकार में क्या दृष्टि करनी है द्यो स्वर्ग, ए में पृथ्वी दृष्टि तकार में स्वर्ग दृष्टि करे, और बीच में जो स्थान है आकाश है वो क्या है संधि, संधि कौन हो गया आकाश, बीच के स्थान में आकाश दृष्टि करे, आकाश तो पृथ्वी स्वर्ग के बीच में है, यहाँ वर्ण में एकार और तकार के बीच में जो स्थान है उसका नाम हो गया संधि, और दोनों का जो मिलन होता है जिसके द्वारा हुआ उसका क्या उसको क्या कहेंगे ना ना, यहाँ संधान हो गया वायु, वायु के द्वारा पृथ्वी स्वर्ग का मिलन होता है, तो इससे तो हमें बीच में जो एक तकार आया वो संधान हो गया, इसमें ए त्वा का तकार दोनों के बीच में और एक तकार आ जाते हैं, साथ उच्चारण करेंगे तो व्याकरण में से होता है। संस्कृत में पाणिनि महर्षि के सूत्र है अनची च, इसे सूत्र है वो तकार का दो बार उच्चारण होता है, तो एक तकार अधिक आ गया हो गया वायु के समान होगा, तो इसे त्वा एक वर्ण में ये उपासना करना है, एकार में पृथ्वी चिंतन करना, त्वा के तकार में स्वर्ग चिंतन करना, बीच के स्थान हो गया आकाश है संधि आकाश चिंतन करना, और संधान हो गया वायु, वायु यहां वायु के स्थान पर कौन है एक तकार अधिक होगा वायु संधान इत अधिलोकम, ये लोक संबंधी पांच अधिगण था, अधिलोकम आगे कहेंगे अधिज्योतिषम, अभी ज्योति संबंधी संहिता कहते हैं, एक संहिता होगी अथ अधिज्योतिषम ज्योति संबंधी संहिता, वही सेत्वा में वही वर्ण है, उसमें अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आप संधि वैद्युत संधानम इत्यादि ज्योतिषम। अधिज्योतिषम ज्योति संबंधी संहिता उपासना, ज्योति समित संहिता उपासना में क्या करना, पूर्व रूप में अग्नि दृष्टि करे। पूर्व रूप क्या है, एक में अग्नि दृष्टि करे, जैसे सालग्राम में विष्णु दृष्टि करते हैं, एक आर में अग्नि दृष्टि करे, और उत्तर वर्ण तकार में आदित्य दृष्टि करे, अग्नि और आदित्य। बीच में जो स्थान है वहां क्या चिंतन करे, संधि क्या है यहाँ, आप संधि, यहाँ बीच में स्थान है तो स्थान आप जल है, और दोनों को मिलाने के लिए संधान है, वैद्युत विद्युत है संधान, ये मध्य में जो तकार उसमें विद्युत दृष्टि करे। ये अधिज्योतिष ज्योति संबंधी संहिता उपासना, अथवा अधिविद्यम विद्या संबंधी, एक एक से चिंतन उपासना है। ये उपासना करने से श्रुति विहित है, श्रद्धा पूर्वक से चिंतन करे, सारे उपासना अंतकोण शुद्धि का साधन है। फल भी कहेंगे, जो फल चाहता है उसको फल मिलेगा, निष्काम होकर करे तो अंतकोण शुद्धि। ये चिंतन करने के लिए एक वर्ण को लेकर के उसमें कैसे उपासना की जा सकती है, ये लोक संबंधी उपासना, ज्योति संबंधी उपासना हुई, अभी विद्या संबंधी उपासना, आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि प्रवचनम संधानम इत्यादि विद्यम। विद्या के विद्या की प्राप्ति शिष्य करता है, आचार्य प्रदान करते हैं, तो पूर्व रूप में आचार्य दृष्टि करे, इसे में एक आर है वहां आचार्य दृष्टि करे, और अंतेवासी उत्तर अंतेवासी है शिष्य, अंत्य का था समीप में वस्तुशीलम यश्य अंतेवासी, शिष्य का स्वभाव है आचार्य के पास वास कर रहे, गुरुकुल में जाकर वास करके विद्या प्राप्त करते थे, इसलिए उसका नाम अंतेवासी, गुरु के पास रह करके सेवा पूर्व स्वरूप विद्या प्राप्त करते, अंतेवासी समीप में वास करने वाला विद्या प्राप्ति के लिए। उत्तर रूपम तो तकार में उत्तर तकार में शिष्य दृष्टि करे, पूर्व एकार में आचार्य दृष्टि करे, बीच में जो दोनों के बीच में स्थान है वो विद्या है संधि, और उसमें संधान हो गया क्या, प्रवचनम संधानम, बीच में जो तकार है उसे प्रवचन दृष्टि करे, इत अधिविद्यम, ये विद्या संबंधी हो गया। अधिविद्यम विद्या संबंधी होने के बाद अथ अधिप्रजम प्रजा संबंधी, पूर्व वर्ण में पहले अथाधिप्रजम माता पूर्व रूपम पीतोत्तर रूपम प्रजा संधि प्रवचनन संधानम इत्यधिप्रजम। पूर्व वर्ण में माता दृष्टि एकार में, उत्तर वर्ण में तकार में पिता दृष्टि, और मध्य में जो स्थान है प्रजा पुत्र आदि, प्रजनन उत्पन्न होना ये संधानम इत अधिप्रजम। अथाध्यात्मम अधराहनु पूर्व रूपम उत्तराहनु उत्तर रूपम वाक संधि जिह्वा संधानम इत अध्यात्मम। अभी अध्यात्म देह में अधराहनु ये नीचे हनु में ये पूर्व रूपम पूर्व वर्ण में अधराहनु दृष्टि करे एकार में, उत्तर वर्ण में तकार में उत्तराहनु ऊपर हनु उत्तर रूपम, बीच में वाक संधि दोनों हनु के बीच में वाक है संधि स्थान, और दोनों के मिलाने वाले है जिह्वा, उसमें संधान जिह्वा दृष्टि एक तकार, इसे में यहां वर्ण है जैसे सामने सालग्राम है और चिंतन करते विष्णु का, सामने वर्ण को रखना इसे त्वा वो प्रतीक रूप हुआ, उसमें चिंतन करना है। एकार में क्या दृष्टि करना, अधराहनु उत्तराहनु तकार में, मध्य में स्थान में क्या दृष्टि करना वाक, और दोनों को मिलाने के लिए तकार एक आया तो तकार को जीवा उसमें दृष्टि कर संधान जीवा, इत्याध्यात्म इति इमा महासंहिता हा। ये सब मिलकर के महासंहिता महती संहिता बड़ी संहिता है। शास्त्र जैसे कहता है शास्त्र में ऐसे ही चिंतन करना है। इसे महासंहिता का बड़ी संहिता रूप है। संहिता शब्द का अर्थ मेलन पास पास उच्चारण करना तो महति संहिता है। यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। ऐसे जो चिंतन करता है महासंहिता पांच अधिकरण में उपासना कहा गया ऐसा जैसे व्याख्याता वेद इसी प्रकार चिंतन करता है तो उसका लाभ है फल है संधीयते प्रजया पशुभि प्रजापुत्र आदि से पशु से युक्त होता है। ब्रह्म वर्चसेन अध्ययन और सदाचार के निमित्त के तेज होता है ब्रह्म वर्चस उसे युक्त होता है। अन्नाद्येन अन्नम से आद्य खाद्य अन्न आदि प्राप्त यथेष्ट होता है। यथेष्ट होता है मतलब खाद्य तो बहुत को प्राप्त है इतना होता है तो अन्य को भी खिला सकता है खिलाता है वही मुख्य है। बहुत अन्न अपने पास है जिनके पास बहुत होता है स्वयं खाते दूसरे को खिलाते हैं उसे युक्त होता है। और सुवर्गेण जो लोकेण स्वर्ग लोक से युक्त होता है ये फल इच्छा से करने पर ही और फल इच्छा नहीं तो अंतगुण शुद्ध होता है। अंतगुण शुद्ध है ज्ञान के लिए क्योंकि उपनिषद यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए उपनिषद शब्द का अर्थ ही ब्रह्म विद्या है उसके लिए सब साधन है ये भी उपासना है। ऐसे उपासना चिंतन करने से अंतगुण शुद्ध होता है। ये श्रौत उपासना श्रुति के द्वारा विहित उपासना प्रतीक उपासना इसे चिंतन करना वर्ण में किस प्रकार चिंतन होता है। आगे मंत्र इसको भी शांति मंत्र में बोलते हैं। ये जो बुद्धि चाहता है ये मंत्र से बुद्धि की प्राप्ति होती इसलिए ये शांति मंत्र पढ़ते हैं जप करता है मंत्र मेधा चाहने वाले। आगे कुछ थोड़े शांति मंत्र समान होने के बाद फिर जो आगे मंत्र श्री काम लक्ष्मी धन संपत्ति चाहने वाला होम करने के लिए आगे है। यश छंदसामृ सवो विश्व रूप छंदो बोध्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृत से देव धारणो भूयासम शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विशुभम ब्रह्मण कोशोसि मेधया पीत श्रुतम मे गोपाय। यहां तक जो मंत्र हुआ ये विद्या प्राप्ति मेधा ग्रंथदान शक्ति मेधा चाहने वाले ये मंत्र का जप करे। यह छंदसाम ऋषभो छंद है वेद वेद में ऋषभ के समान श्रेष्ठ है प्रधान सारे वेद में जितने मंत्र है वो छंदसाम वेदानम ऋषभ ऋषभ के समान श्रेष्ठ है ओंकार है। यहां यश छंदसा ऋषभ सब में श्रेष्ठ कौन है ओंकार ये ओंकार उपास्य है पर ब्रह्म का ओंकार से उपासना करते विश्व रूप वो सर्वरूप है ओंकार सर्वत्र ओंकार व्याप्त है वेद में इसे सर्वरूप है ओंकार। छंदोभ्यो अधि अमृता संभव हो ओंकार छंदोभ्य का थे वेद से वेद अमृत है उसे अमृत रूप वेद से प्रकट हुआ ओंकार। सारे लोक में सारे देव में सारे वेद में भूर भुव स्व कर करके व्याहृति सब में सार निकालने के लिए देवताओं ने मथन किया। सारे लोक में देव में वेद में श्रेष्ठ कौन है ये ओंकार शब्द भी प्रकट हुआ। छंदोभ्यो अधि अमृता संभव अधिक संभव के साथ करना छंदोभ्यो अमृतात् छंद रूप अमृत से प्रकट हुआ संभव ओंकार सारे वेद में श्रेष्ठ हो गया ओंकार इसे विश्व रूप हुआ। स मा इंद्र मेधया स्पृणोतु स ओंकार रूप परमात्मा इंद्र है परमात्मा मेधया स्पृणोतु मेधा प्रदान करे पूर्ण करे मां मुझे वो ओंकार रूप जो परमात्मा है इंद्र है परमेश्वर इंद्र मेधा से पूर्ण करे अमृत से देव धारण भूयासम, हे देव परमात्मा अमृत का धारण मैं करूं, ये श्रवण करके वेद जन्य अर्थ ज्ञान प्राप्त करूं, अमृत का धारण करूं। शरीर में विचर्षण, मेरा शरीर विचर्षण पुष्ट हो, सब शरीर समर्थ होने पर ध्यान ज्ञान प्राप्त कर सकते, ध्यान कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं। जिह्वा में मधुमत्तमा, परमात्मा से प्रार्थना करते मेरी जिह्वा मधुमत्तमा हो, मधुर वासिनी हो। एक जिह्वा से शब्द से किसको कष्ट दे सकते, किसको प्रसन्न कर सकते हैं। जिह्वा से यदि कटु वचन कहते हैं, इसको कहते अशस्त्र हिंसा। एक तो शस्त्र से हिंसा होती, शस्त्र के बिना हिंसा, शब्द कुछ कहने पर दूसरे को कष्ट होता है। कितने शब्द कैसे, थोड़े शब्द में, वही एक ही शब्द उसको कहने में थोड़ा उच्चारण करने में इधर उधर हो गया, अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो मधुर भाषिणी, यही अभ्यास करना होता है साधक को, शब्द से किसको कष्ट नहीं दे, प्रेम से बोलने का है। मधुर भाषिणी जीवा हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये भी एक दैवी संपत्ति है, किस किस की वाणी है बड़े प्रेम से बोलेंगे, बड़ा कपटाचरण नहीं होना चाहिए। कपटाचरण करने वाले, झूठ चोरी करने वाले भी बड़े प्रेम से बोलेंगे, विश्वास करा लेंगे, वो अलग है, ऐसा नहीं, स्वाभाविक है। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्ण से भूरि बहुत श्रवण करो, ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत लोगों को वैराग्य हो जाता है, संसार से तो नहीं होता है, श्रवण से वैराग्य होता है। हाँ, बहुत हमने सुन लिया, ये क्या वेद उपन से नाम लेते हो, वेद उपन सब हमने पढ़ा, बहुत पढ़ा है। कोई कोई आकर बोलते हैं, हमारी जिज्ञासा है, क्या जिज्ञासा है, बोले मैंने बहुत पढ़ा, अमुक ग्रंथ पढ़ा, वह क्या जिज्ञासा नहीं बोल करके क्या क्या पढ़ाए बोलते हैं। चलो आपने सब पढ़ लिया जी, क्या जानना चाहते हो, उपनिषद वेद गीता सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बस बहुत पढ़ लिया। बहुत पढ़ लिया नहीं, बहुत पढ़ करके यदि अर्थ ज्ञान हुआ तो बहुत पढ़ लिया, अर्थ ज्ञान नहीं है तो बहुत क्या पढ़ लिया। बहुत पढ़ लिया, बहुत में बहुत व्यवसाय किया, बहुत व्यवसाय क्या, व्यवसाय बहुत क्या कमाया, क्या कमाया तो कहो व्यवसाय, कुछ कमाया नहीं, जितने कमाया उतने खाया, उसे अधिक खर्च कर दिया, तो क्या बहुत व्यवसाय किया। बहुत श्रवण किया, बहुत श्रवण किया तो श्रवण बहुत हो जाए, श्रवण पूरा हो जाए, शास्त्र तात्पर्य दृढ़ निश्चय हो जाए, तो मनन शुरू होता है। श्रवण तभी कहते पूरा हो गया यदि मनन शुरू हो जाए, और मनन भी कहते बहुत मनन कर लिया। मनन यदि ठीक ठीक हो जाए तो निधि ध्यासन अपने आप शुरू होना चाहिए, अपने आप श्रवण मनन पूरा हो गया तो निधि ध्यासन। कोई कहता हाँ निधि ध्यासन भी मैंने बहुत कर लिया, निधि ध्यासन बहुत कर लिया तो कब होगा, साक्षात्कार हो जाना चाहिए। श्रवण पूरा हो तो अपने आप मनन होगा, मनन पूरा हो जाए संशय निवृत्त हो गया तो ब्रह्म में हूं, ये ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर चले, और ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर चले तो उसकी समाप्ति होती है साक्षात्कार। जो साक्षात्कार नहीं हो तो ब्रह्माकार वृत्ति में रहेगा और कुछ नहीं करेगा, वही करेगा। जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति प्रारंभ हो जाती है, अहम अस्मि ब्रह्म से ब्रह्माकार वृत्ति जो हम करते थे, थोड़ा उपासना है, उपासना करते करते श्रवण मनन करे तो ब्रह्माकार वृत्ति होगी। किन्तु ब्रह्माकार वृत्ति प्रारंभ हो जाए उतने उसको लगता है कि सब कुछ हो गया और कुछ मेरा कर्तव्य नहीं है, और कुछ नहीं करना, केवल ब्रह्माकार वृत्ति करे। तो इसलिए श्रवण पर्याप्त हो गया शब्द से कहते, ऐसा नहीं, श्रवण तो करते रहे निरंतर। श्रवण काल में भी ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, करने से बहुत श्रवण करूं, बधिर नहीं हूं, बधिर नहीं बन, बधिर हो जाए तो कुछ श्रवण नहीं कर गया, पाप कर्म का फल है। कोई जन्म से कुछ दिन में बधिर होता है तो ये जब तक श्रवण में इंद्रिय में सामर्थ्य तब श्रवण करते रहे। ब्रह्मण कोशोसी, ओंकार कहता आप ब्रह्म के कोश, खड़ग जैसे कोश में रहता है, इसी प्रकार आप में ब्रह्म की उपलब्धि होती है। कोष के अंदर खड़ग जिस प्रकार इसे ओंकार में ब्रह्म की उपलब्धि होती, इसलिए आप ब्रह्म का कोष के समान है। किंतु मेधया पीहित, मेधा से मेधा लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान से ढका हुआ है,